आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, आठवां बाब और उसकी 26वीं आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नियत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुआफिक मुकदसों की शफायत करता है। लूका के इंजील के अंदर 11वां बाब और उसकी 1वीं आयत में लिखा हुआ है, यहां पर फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, खुदावंद जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया तू भी हमें सिखा। और उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, हमारी रोज की रोटी हर रोज हमें दिया कर और हमारे गुनाह मुआफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को मुआफ करते हैं और हमें आजमाइश में ना ला। सबसे पहले तो JCTV के तमाम देखने वालों को सबको हम वेलकम करते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और खुश हैं कि आप आज के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आज थोड़ी देर के लिए दुआ के ताल्लुक से चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दुआ का मतलब है खुदा के साथ राबता, कम्युनिकेशन रखना। दुआ में हम अपनी दरख्वास्तें, अपनी इल्तजाएं, मुनाजातें खुदा तक पहुंचाते हैं और खुदा उनकी आवाज हम सुनते हैं। दुआ यक तरफा नहीं होती, कम्युनिकेशन टू वे होती है। सो बहुत से लोग समझते हैं कि दुआ करना शायद खुदा के हजूर में आकर अपनी बातें कह रही है। नहीं नहीं, दुआ में आप अपनी बातें कहते हैं, लेकिन दुआ में आप खुदावंद की आवाज को सुनते भी हैं। सो प्रेयर टू वे कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव दुआ कैसे की जाए, क्योंकि कई दफा हम दुआ करते हैं और हमें दुआ करने का तरीका नहीं आता, हमें दुआ करना नहीं आती। और ये सच है, हम दुआ करना नहीं जानते। रोमियो 8वें बाब में जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, वहां पर पौलुस रसूल लिख रहा है कि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। सो अगर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल जैसा बंदा ये लिख रहा है कि हम दुआ करना उस तरह से नहीं जानते जिस तरह हमें करनी चाहिए, तो हम कहां थे? हमें भी दुआ करना नहीं आता जैसे हमें दुआ करनी चाहिए, सो हम दुआ करना सीखना चाहते हैं। लूका के अधीन 11वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था और जब कर चुका तो उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, हमें भी दुआ करना सिखा जैसे यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। यहां पर काबिले गौर बात है कि कब शागिर्दों के अंदर यह ख्वाहिश पैदा हुई कि हम भी दुआ करना सीखना चाहते हैं, जब उन्होंने अपने मालिक और अपने खुदावन को दुआ करते हुए देखा। कोई भी लीडर अगर चाहता है कि उसके पैरोकार दुआ करना सीखें, तो बेहतरीन मेथड यह है कि उनको दुआ करके दिखाएं, नमूना दें, और जब वो आपको दुआ करते देखेंगे तो फिर उनके अंदर भी ख्वाहिश पैदा होगी करें। अगर कोई मां बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद दुआ करना सीखे, तो मां बाप को उनके सामने दुआ करनी होगी। अगर एक पासवान चाहता है कि उसकी कलीसिया दुआ को कलीसिया बन जाए, तो उस पासवान को अपनी कलीसिया के सामने दुआ की जिंदगी नमूने के तौर पर गुजारनी होगी, फिर ही उसकी कलीसिया भी दुआ को कलीसिया बन सकती है। तो कब उन शागिर्दों ने कहा कि हमें दुआ करना सिखा, जब उन्होंने अपने मालिक और खुदावन को दुआ करते हुए देखा। और फिर अगर उन्होंने कहा खुदावन हमें दुआ करना सिखा, तो आज मेरी और आपकी भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम भी दुआ करना सीखना चाहते हैं। आई खुदावन हमें दुआ करना सिखा, हम दुआ करना सीखना चाहते हैं। खुदावन तो हमारी मदद कर, हेल्प अस गॉड। अब दुआ कि ये रिक्वेस्ट जब उन्होंने की तो खुदा यीशु ने उनकी इस रिक्वेस्ट के जवाब में उन्हें दुआ रबानी सिखाई। आज दुआ करना हम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल है कि खुदा यीशु हमारा सबसे बड़ा उस्ताद है। जिस तरह उसने दुआ करना सिखाया है, तालीम दी, हमें उस पर गौर करना चाहिए। और नंबर दो, जिस तरह वो दुआ करता था हमें वैसे दुआ करनी चाहिए। लेकिन आज एक खास पहलू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मंजूर करवाना चाहता हूं, और वो ये है कि दुआ जब भी आप करें खुदा के कलाम के मुताबिक दुआ करें। अगर आपको बाइबल मुकद्दस में किसी भी जगह कोई वादा खुदावन का नजर आता है, खुदा ने कोई प्रॉमिस किया है, तो उस वादे को बुनियाद बनाकर आप दुआ करें। और जब दुआ करें तो ये अल्फाज कहें कि खुदावन तूने ये वादा किया है, और फिर उस वादे को दोहराएं। और जब आप रिपीट करेंगे, खुदा को उसका वादा याद दिलाएंगे, तो आपकी दुआ खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक होगी, आपकी दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक होगी। और जो भी दुआ खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक होती है, खुदा उन दुआओं का जवाब देता है। यशायाह की किताब में खुदा ने खुद हमें यह हुक्म दिया है, उसने कहा मुझे याद दिला, हम बाम हुज्जत करें, मुझे याद दिला। खुदा ने कह रहा है, आप जानते हैं दुनियावी मां बाप होते हुए कई दफा हम अपने बच्चों के साथ कोई प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं। अगर मैं अपने बच्चे से कहूं कि बेटा मैं आपके लिए ये चीज लाकर आपको दूंगा, आपको फोन लाकर दूंगा, मोबाइल फोन लाकर दूंगा, और जो ही आप घर में आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो वो बच्चा करता है वो ये है कि डैडी आपने तो वादा किया था कि मैं ये चीज लाऊंगा, वो कहां ले आए? अगर नहीं लाए तो वो बच्चा उतनी देर तक आपको याद दिलाता रहेगा वो वादा, जब तक आप वो वादा पूरा नहीं करते। हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसी तरह जब हम खुदा की हजूरी में आए खुदा के वादों को याद दिलाएं, खुदा के वादों को रिपीट करें, खुदा के कलाम की आयात को कोट करें, और खुदा के इस चैलेंज को याद रखें, हुक्म को याद रखें जो उसने हमें दिया है। वो कहता है मुझे याद दिला, और हम उसके वादे उसको याद दिलाएं। मैं आपको चंद मिसालें खुदा के कलाम में से देना चाहता हूं इस प्रिंसिपल की, इस असूल की। खुदा यीशु ने आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से ये प्रॉमिस किया, वादा किया कि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओ, रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा पाओ। ये खुदा का वादा, ये वादा पुराने अहदनामे में भी योएल नबी की मार्ग पर, यशायाह नबी की मार्ग पर, हिजकिएल नबी की मार्ग पर किया गया, और खुदा यीशु ने भी उसी वादे को कंफर्म किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी ये कहा था कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद में आने वाला है वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। सो खुदा यीशु ने रूह से बपतिस्मा, आग से बपतिस्मा देने का वादा किया, उसे कहा तुम थोड़े दिनों के बाद पाक रूह का बपतिस्मा पाओगे। ये वादा सुनने के बाद वो शागिर्द जैतून के उस पहाड़ से वापस यरूशलेम में गए, उस बाला खाना में चले गए, और तकरीबन 10 दिन तक दुआ करते गए। और इसके बाद जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा किए कि पेंटिकोस्त के दिन खुदा ने अपने उस वादे को पूरा करते। खुदा का वादा मौजूद था, लेकिन उस वादे की तकमील के लिए उन्हें उतनी देर तक दुआ करते रहना था, दुआ करना पड़ी जब तक वो वादा पूरा नहीं हो गया। एक और मिसाल पर गौर करें, खुदावन ने कलाम किया अपने बंदा एलिया नबी से, उसने कहा जा अखियब से मिल और मैं बारिश बरसाऊं, वादा हो गया, खुदा ने कलाम कर दिया। अब इस काम के बाद एलिया ने कोहे किरमल पर बाल और यसीलत के नबियों को इकट्ठा किया, चैलेंज किया गया कि जो खुदा आग से जवाब दे वही सच्चा खुदा ठहरे। और एलिया ने बड़ी मुख्तसर सी दुआ की तो आसमान से आग नाज़िल हुई। लेकिन इसके बाद एरिया वहां पर दुआ करने लगा। बाइबल के अंदर लिखा अपना सर घुटनों में कर लिया और दुआ करने लगा। उसने अपने नौकर को भेजा दुआ के बाद, कहा देर कोई बादल नजर आ रहा है, कोई बारिश के आसार हैं? तो उसने कहा कुछ भी। बाइबल में लिखा 7 बार उसने उस नौकर को भेजा और 7वीं बार उसने आकर कहा कि छोटा सा बादल का टुकड़ा आदमी की के हाथ के बराबर अकेली के बराबर नजर आया है। तो उसने बादशाह से कहा रथ तैयार कर ले, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। यहां पर भी खुदा ने वादा किया, एलिया के साथ कलाम किया, लेकिन वो वादा पूरा उस वक्त हुआ जब एलिया ने दुआ की और उतनी देर तक वो दुआ करता रहा जब तक वो वादा पूरा ना हो। खुदा ने वादा किया कि मेरे ये लोग 70 बरस तक असीरी में जाएंगे और जब 70 बरस पूरे हो जाएंगे मैं अपने लोगों को फिर वापस लेकर आऊंगा। बाइबल मुकद्दस में दानियल की किताब उसके 9वें बाब में लिखा है, दानियल कहता फिर मैंने उन बरसों का हिसाब कलाम मुकद्दस में से समझा जिनके मुताबिक यर्मिया नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ था कि इसराइल और यरूशलम की असीरी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे और जब मुझे समझ आए तो मैं दुआ करने लगा। दानियल जब कलाम में से पढ़ा कि खुदा ने यह वादा किया है कि 70 बरस के बाद मैं अपने लोगों की असीरी खत्म करके उन्हें वापस लाऊंगा, तो दानियल उस वादे को लेकर खुदा के हजूर में बैठ गया और दुआ करने लगा और उतनी देर तक दुआ करता रहा जब तक खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उससे कलाम किया। तो जो प्रिंसिपल हमें यहां पर नजर आता है वो ये है कि खुदा के कलाम के अंदर किसी बात के लिए आपको वादा नजर आ जाए तो इसका मतलब है उस वादे को लें, खुदा के हजूर में दुआ करना शुरू करें, उस वादे को याद कराएं खुदा को, खुदा के कलाम की आयात को कोट करें और आप देखेंगे आपकी दुआ का जवाब आपको मिल जाए। क्योंकि यूहन्ना के खत में बाइबल मुकद्दस में दुआ के ताल्लुक से ईमान को मजबूत करने वाली बात यहां पर लिखी हुई है। यूहन्ना के खत में पहला यूहन्ना का खत 5वां बाब और उसकी 14 है, यहां पर लिखा और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया। खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी दुआएं मुअस्सर अगर होंगी तो उन्हें खुदा की मर्जी के मुताबिक होना जरूरी है। अगर कोई दुआ खुदा की मर्जी के मुताबिक है तो खुदा उसका यकीनन जवाब देगा। और जब हम खुदा के वादों को बुनियाद बनाकर दुआ करना सीख जाएंगे, दुआ करना शुरू करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देगा, हमारी दुआएं खुदा की मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। बाइबल में योएल नबी की मार्फत बाइबल में वादा किया गया है, 2वां बाब जो है 2वां बाब उसकी आयत नंबर 22 में लिखा है, पस ऐ बनी सिय्योन खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शाद मानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इत्तदाल से बख्शेगा, वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बार बार भेजेगा। यहां पर वादा है, खुदा बनी सिय्योन से वादा कर रहे हैं, बनी सिय्योन खुश हो, खुदावंद पहली बरसात और आखिरी बरसात तुम्हें बख्शेगा, बर वक्त बख्शेगा। पहली बरसात के बारे में लिखा है इत्तदाल से बख्शेगा और आखिरी बरसात बर वक्त वो बख्शेगा, वादा मौजूद है। लेकिन ज़िकरिया की किताब अगर आप इसको यहां पर पढ़कर देखें उसके 10वां बाब के अंदर, तो यहां पर लिखा है पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो, खुदावंद जो बिजली चमकाता है वो बारिश भेजता है। तो वादा मौजूद है, खुदा ने वादा किया मैं पहली और पिछली बरसात भेजूंगा, लेकिन यहां पर हमें हुक्म दिया गया है कि पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदा उनसे दुआ करो। इसका मतलब वादे मौजूद हैं, लेकिन उन वादों को पूरा होते हुए देखने के लिए हमें दुआ करनी होगी। वो वादे पूरे उस वक्त होंगे जब हम दुआ करना शुरू करेंगे, हमें दुआ करना होगा। और हमारी दुआएं खुदा के कलाम के वादों की बेस पर पूरी जाए। एक आदमी के बारे में मैं पढ़ रहा था, वो लिखता है कि कोई मुझे ऐसा वादा मिल जाए जो मेरी दुआ के ऐन मुताबिक हो, तो फिर मेरी दुआ ईमान के साथ होगी और मुझे उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो हमारी दुआएं खुदा के वादों के मुताबिक होनी चाहिए। खुदा अपने वादों में सच्चा है, बाइबल में लिखा है उसके सब वादे हाँ में है। अगर बाइबल में हमें लिखा हुआ मिल जाए कि खुदावन ने यह प्रॉमिस किया है, तो हम दिलेरी से उसके हजूर में जाए और उससे कहें खुदावन तूने ये वादा किया है, और खुदा अपने कलाम का और अपने वादों का कभी इनकार नहीं कर सकता। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है, खुदा अपने वादों को पूरा करता है। बाइबल में लिखा हुआ है आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन उसके उसकी बातें हरगिज ना टलेंगी। उसने अगर वादा किया है और हम उस वादे को सामने रखकर उसके लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं, खुदा 100% उस वादे को पूरा करता है और हमारी दुआओं का जवाब हमें हां में मिल जाता है। तो आज हमने ये सीखा है जो प्रिंसिपल खुदा उनके कलाम में से दुआ के कागज कि कैसे हमारी दुआएं मुअस्सर हो सकती हैं, कैसे हमारी दुआओं का जवाब हमें मिल सकता है। दुआ के लिए जरूरी है कि आपकी दुआएं खुदा की मर्जी और खुदा के कलाम के मुताबिक हों, और दुआ में खुदा के वादों को रिपीट करें, आयतों को रिपीट करें, इसलिए खुदा तू ने यह फरमाया है, उसके बाद उसको याद करें, क्योंकि यशाया की किताब में खुदा खुद हमें ये हुक्म देता है कि हमें खुदा के वादे उसको याद दिलाना चाहिए। मैं ये आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यशाया की किताब में, बाइबल मुकद्दस में खुदा कहता है, खुदा के कलाम में यशाया 43वां बाब और उसकी 26वीं आयत। खुदा कहता है मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान कर ताकि तू साबित रहे। खुदा यकीनन दुआओं को सुनता है, खुदा दुआओं का जवाब देता है, लेकिन कई दफा हमें दुआ करना दुरुस्त तरीके से आता नहीं है। तो आज मेरी ये ख्वाहिश है, ये दुआ है कि जैसे शागिर्दों ने कहा खुदा हमें दुआ करना सिखा, हम भी खुदा उनसे कहें खुदा हमें दुआ करना सिखा। और यकीनन जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूह हमारी मदद करता है और हमें दुआ करना सिखाता है। तो आज जो सबक हमने सीखा है, जो लेसन हमने सीखा है, वह है कि हमें खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के वादों को याद रखते हुए दुआ करना चाहिए और खुदा के वादों को उसे याद दिलाना चाहिए। अभी एक और दुआ के ताल्लुक से प्रिंसिपल है जिसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मरकुस की अंजील उसके 11 बाब और 25वीं आयत में लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुना माफ करे। यहां पर दुआ और माफी का आपस में गहरा ताल्लुक नजर आता है। कई दफा हमारी दुआएं इसलिए नहीं पहुंच पाती खुदा की हजूरी तक, हमारी दुआओं को हमें जवाब नहीं मिलता, अगर हमारे अंदर माफ ना करने वाली रूह होगी तो हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलेगा, हमारी दुआएं खुदा तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि माफ ना करना हमारे और खुदावन के दरमियान रकावट बन जाता है। इसीलिए खुदावन यीशु ने कहा कि जब तुम दुआ के लिए खड़े हो तो एक दूसरे से को माफ करो, अगर किसी को कोई शिकायत हो भी तो उसे माफ करें, तब जब तुम दुआ करने के लिए करते हो। क्योंकि बुनियाद यह है, प्रिंसिपल यह है, कैसे हमें माफ करना है, जिस तरह खुदा ने हमारे कसूर माफ किया, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर में माफ कर। खुदा यीशु ने इस बारे में तालीम देते हुए ये बयान किया कि कितनी दफा हमें अपने कसूरवार को माफ करना चाहिए। पत्रस ने खुदावंद यीशु से सवाल किया कि खुदावंद अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं, क्या 7 बार? यीशु ने कहा मैं तो उसे ये नहीं कहता 7 बार, بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار. 7 دفعہ کے 70 بار کا مطلب ہے 7 کو 70 سے ضرب دے. تو یہ 490 مرتبہ بنتا ہے. سو کتنی بار ہمیں اپنے بھائی کو معاف کرنا ہے؟ 490 دفعہ. اب ایک دن میں آپ 490 دفعہ معاف کرتے ہیں تو آپ کے معاف کرنے کی عادت ہی بن جائے. اور پھر یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد خدا یسوع نے ایک تمثیل سنائی متی کے انجیل اس کے 18 باب میں. خدا یسوع نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ اس نے کہا کہ آسمان کے بادشاہ اس بادشاہ کی مانتا جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا. جب حساب لے رہا تھا تو ایک قرض دار اس کے سامنے حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے, اور اس کے پاس جو کچھ بھی تعداد کرنے کو اس نے اس کا سارا قرض معاف کر. پھر ایک اور نوکر اس کے سامنے آیا, وہ جب باہر نکلا تو اسے وہ نظر آیا اور اس نے اس سے تھوڑی سی رقم لے لی. اس کے 10,000 توڑے ہیں جو معاف کیے گئے, اور یہ آدمی تھا جس کے لیے صرف 100 دینار تھا جس کا دینا تھا. اس نے اس کو پکڑ لیا, اس کا گلا گھونٹا اور اسے کہا کہ ابھی مجھے بھی اسے منت کی, مجھے مہلت دے, میں تجھے ادا کر دوں گا, لیکن وہ نہ مانا. اس نے اس کو پکڑ کر بند کروا دیا. جب اس بادشاہ کو خبر ملی کہ میرے اس نوکر نے ایسے کیا ہے جس کا میں نے اتنا قرض معاف کیا, تو اس نے اس کو واپس بلایا. اس نے کہا کہ اے شریر نوکر, میں نے وہ تیرا سارا قرض تجھے اس لیے معاف کر دیا کہ تو نے میری منت کی. کیا تجھ پر لازم نہ تھا کہ تو بھی ویسا ہی کرتا جیسا میں نے تیرے ساتھ کیا؟ اس نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جیل میں ڈال دو, بند کر دو جب تک یہ پورا پورا قرضہ ادا نہیں. اور خدا یسوع نے کہا تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو اپنے دل سے معاف نہ کرے. سو ہمیں کیسے معاف کرنا چاہیے؟ ویسے ہی جیسے ہمارے مالک خداوند نے ہمیں معاف کیا. اسے کتنا ہمیں معاف کیا ہے؟ اسے ہمارے بے شمار گناہ تھے جو اس نے معاف کر, بالکل اسی آدمی کی طرح جس نے 10,000 توڑے دینے تھے اور مالک نے سارا قرض اسے معاف کر دیا. جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے, جب سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں, آج تک ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں, لیکن جس دن ہم نے توبہ کی, خدا ان سے معافی مانگی, اس کے سامنے چلائے, خدا نے ہمارے وہ سارے گناہ اور خطائیں اپنے خون کے وسیلہ سے معاف کر. اب وہ ہم سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہیں معاف کیا ہے, تمہیں بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا وہ قرض جو معاف کر دیا گیا تھا پھر سے واپس نکال لیا. اسے کہا گیا اب تجھے یہ ادا کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے اوروں کو اس طرح سے معاف نہیں کیا جس طرح میں نے تجھے معاف کیا. تو جب ہم دعا کے لیے خدا کے حضور میں آئیں, اہم پرنسپل ہے کہ ہمیں گناہوں کو, اوروں کے گناہوں کو, قصوروں کو, خطاؤں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے ہیں. خدا یسوع صلیب پر لٹکا ہوا تھا اور اس نے وہاں پر جو دعا کی, آخری 7 کلمے ہم گڈ فرائیڈے والے دن سب سنتے ہیں. ایک تھا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی میں تو اس کو معاف کر دوں گا, یہ آئے تو صحیح, مجھ سے معافی مانگے تو صحیح, پھر ہی میں اس کو معاف کروں گا. کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یسوع کو مسلوب کیا اس سے معافی مانگی تھی؟ نہ. خدا یسوع نے اپنے دل میں اپنی طرف سے اسے معاف کر دیا. خدا یسوع کے دل میں ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی. معاف نہ کرنے والی روز کے اندر اس نے ان کو معاف کر دیا. دوسری بڑی مشہور اگزامپل یوسف کی. اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا, اس کو بیچ دیا. ان کے اس رویے کی وجہ سے وہ غلام بن کر مصر میں گیا, فوتیفر کے گھر میں غلامی کی حالت میں رہا. کتنے سال وہ بیچارہ جیل میں رہا ان بھائیوں کے سبب سے, اور پھر خدا نے یوسف کی مدد کی, وہ جیل سے نکالا گیا, فرعون کے بعد دوسرے درجے کا حاکم بن گیا, اور اب یوسف تخت پر بیٹھا ہے اور اس کے بھائی اس کے سامنے آتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, سر جھکاتے ہیں. تو یوسف کو یقیناً وہ خواب یاد آ گئے جو اس نے 20 سال پہلے دیکھے تھے, اور اب یوسف اختیار رکھتا ہے, اتھارٹی ہے, وہ چاہتا ایک حکم دے گا تو اپنے بھائیوں کو ہلاک کروا سکتا تھا, لیکن یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. نہ صرف معاف کر دیا بلکہ انہیں کہا اپنے اپنی فیملیز کو یہاں پر لے آؤ, جو کہ ابھی قحط کے 5 سال اور باقی ہیں, ان کو یہاں لے آؤ, میں تمہاری پرورش کروں گا, اور اچھی بہترین جگہ پر اس نے ان کو سیٹل کیا, اور جب تک یوسف زندہ رہا ان پر دست شفقت رکھا, ان کی پرورش کرتا رہا, اور یہ ہے معافی کا لیسن, نمونہ, کہ نہ صرف معافی کرنا ہے بلکہ اب یہ ان کی پرورش بھی کر رہا ہے اور ان کی خدمت بھی کر رہا ہے. سو ہمیں بھی اپنے قصور واروں کو معاف کرنا ہوگا. جب تم دعا کرتے ہو, دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہو, تو ایک دوسرے کے گناہ معاف کرو. تو بائبل مقدس میں ایک آیت اور میں پڑھنا چاہتا ہوں, خدا کے کلام میں اسی معافی کے تعلق سے بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, افسیوں کے خط میں 4 آیت نمبر 32 میں, اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو, اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. سو ایک رکاوٹ جو ہماری دعا کے جواب حاصل کرنے میں آ سکتی ہے وہ معاف نہ کرنے والی روح ہے. جب ہم دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں معاف کرنا ہوگا, ہمیں اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہمارے اور خدا کے بیچ میں گناہ کی دیوار ہوگی تو بھی ہماری دعا نہیں سنی جائے گی. بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے, داؤد کہتا ہے اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. یسعیاہ کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے, بلکہ تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا, تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے, ایسا کہ وہ نہیں سنتا. سو گناہ ہمارے اور خدا کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کے لیے خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. جب وہ گناہ دھل جائے گی یسوع کے خون میں تو رکاوٹ دور ہو جائے گی, اور نہ صرف اپنے ہی گناہوں سے معافی مانگنی ہے بلکہ اگر کسی دوسرے کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات ہے تو ہمیں اس کو بھی معاف کرنا ہوگا. تو یہ دوسرا پرنسپل ہے. پہلا پرنسپل آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمیں خدا کے وعدوں کو ریپیٹ کرنا چاہیے, اور میں نے یہ تجربے سے دیکھا کہ جب دعا کرتے ہوئے آپ خدا کے کلام کی آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں, ان کو بیان کرتے ہیں, تو برکت ملتی ہے. دعا کی دعا پاورفل دعا بن جاتی ہے, جو کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق اس کی مرضی کے مطابق دعا کر. اور پھر دوسرا پرنسپل جو آج ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ جب تم دعا کے لیے کھڑے ہو تو اگر کسی کو کسی سے کوئی شکایت ہو بھی تو وہ اپنے بھائی کو معاف کرے. کیسے معاف کرے؟ جیسے خدا نے ہمیں معاف کیا. کتنی بار معاف کرنا ہے؟ لاتعداد بار. جتنی بار وہ خطا کرے ہم نے اس کو معاف کرنا. کیا ہوگا اگر ہم نہیں معاف کریں گے؟ خدا ہمیں بھی معاف کریں گے. بدعا ربانی میں یہی تو خدا نے ہمیں سکھایا ہے, جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. اور اس کے اینڈ میں رب یسوع نے زور اسی بات پر دیا, اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے. میری دعا ہے کہ جب باتیں آپ کے لیے مؤثر دعا کریں برکت دے, پھر اگلے ہفتے اسی ٹائم پر جو میں رات کے دن 10:30 بجے اور پھر شام 6 بجے پھر